आज हम जिस दुनिया को देखते हैं ना, मतलब देशों की सरहदें, महाशक्तियों का उदय और अलग अलग संस्कृतियों का जो पूरा ढांचा है, ऐसा लगता है कि ये सब आधुनिक राजनीति या शायद विश्व युद्धों का नतीजा है।
बिल्कुल, सतह पर देखने से तो यही लगता है।
हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मध्य पूर्व के साम्राज्यों का पूरा ढांचा, सत्ता के केंद्रीकरण का इतिहास और यहां तक कि आज जो हजारों अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब की नींव हजारों साल पहले की एक प्राचीन शराबी घटना में छुपी है।
अरे वाह, एक शराबी घटना, एक पारिवारिक श्राप और एक अधूरी मीनार का मलबा, मतलब इतिहास सच में बहुत अजीब है।
बिल्कुल अजीब है। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं।
हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। हम रॉबर्ट वॉर्नॉय के ओल्ड टेस्टमेंट इतिहास के लेक्चर 17 के नोट्स पर बात कर रहे हैं।
सही कहा, हम उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब के उन हिस्सों में गोता लगा रहे हैं जो मानव सभ्यता की शुरुआत का सबसे बारीक नक्शा खींचते हैं।
और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ इन प्राचीन कहानियों को दोहराना नहीं है, हम उस तंत्र को समझना चाहते हैं जिसने दुनिया को आकार दिया।
मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे एक परिवार के आपसी टकराव ने भविष्य के भौगोलिक नक्शे तय कर दिए और कैसे प्राचीन दुनिया का पहला तानाशाह पैदा हुआ।
हाँ, और सबसे अहम बात, कैसे इंसानियत की सत्ता को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए भाषाओं का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया।
तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं, क्योंकि ये स्रोत सिर्फ अतीत नहीं बल्कि आज की दुनिया का DNA दिखा रहे हैं।
कहानी जल प्रलय के बाद शुरू होती है, नोआ और उनका परिवार।
पूरी इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत, मतलब एकदम खाली कैनवास। लेकिन सब कुछ शांति से आगे बढ़ने की बजाय यहीं से भविष्य के बड़े साम्राज्यों के बीच टकराव की नींव पड़ जाती है। उत्पत्ति अध्याय 9 के अनुसार नोहा शराब के नशे में एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां उनका बेटा हैम कुछ ऐसा करता है जिसे बहुत ही अनैतिक माना गया है।
और जब नोहा को होश आता है तो वो एक श्राप देते हैं, और यहीं से इतिहास एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है।
अजीब क्यों? मतलब श्राप ही तो दिया था ना।
हाँ, लेकिन नोहा उस कृत्य के लिए अपने बेटे हैम को सीधे तौर पर श्राप नहीं देते, बल्कि वो हैम के बेटे यानी अपने पोते कनान को श्राप देते हैं।
अच्छा,
पोते को। हाँ, नोहा की भविष्यवाणी थी कि कनान अपने भाइयों का, जिसे स्रोतों में दासों का दास कहा गया है, वो बनेगा।
और ये भाई मैच परिवार के सदस्य नहीं थे ना? अगर हम स्रोतों को गहराई से देखें तो ये असल में भविष्य की महाशक्तियों का ब्लूप्रिंट लग रहा है।
बिल्कुल सटीक बात पकड़ी आपने। इसे समझने के लिए हमें उत्पत्ति के अध्याय 10 को देखना होगा। हैम के चार प्रमुख बेटे थे, कुश, मिज्रम, पुत और कनान।
और ऐतिहासिक रूप से ये नाम तो प्राचीन काल के सबसे बड़े साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सही कहा, मिज्राम का मतलब है प्राचीन मिस्र, और कुश की पहचान मेसोपोटामिया या फिर इथियोपिया के शक्तिशाली क्षेत्रों से की जाती है।
और कनान का श्राप ये था कि वो इन महान शक्तियों के अधीन रहेगा।
हाँ बिल्कुल, अगर जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो कनानियों का क्षेत्र, जिसे आज हम इसराइल, लेबनान और सीरिया के हिस्से के रूप में जानते हैं, वो मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच का एक चौराहा था,
जहां ये दोनों महाशक्तियां अपना दबदबा बनाने के लिए हमेशा सैन्य अभियान चलाती रहीं।
एकदम सही, कनानी लोग कभी भी खुद एक बड़ी महाशक्ति नहीं बन पाए, वे हमेशा इन बड़े साम्राज्यों के बीच में पिसते रहे।
एक मिनट, यहां मुझे एक बहुत बुनियादी बात खटक रही है। मतलब अगर गलती पिता हैम ने की थी तो श्राप उसके बेटे कनान को क्यों मिला?
ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है।
ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पिता के अपराध की सजा उसके अजन्मे बच्चे को दी जा रही हो। ये किस तरह का न्याय हुआ?
स्रोतों में इसका बहुत ही तार्किक विश्लेषण दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि ये किसी इंसान द्वारा गुस्से में दिया गया कोई आम श्राप नहीं था।
तो फिर क्या था ये?
यह एक ईश्वरीय भविष्यवाणी थी। नोहा ने शायद ये भांप लिया था कि हैम के अंदर जो अनैतिक गुण थे वो कनान और उसके वंशजों में और भी भयंकर रूप ले चुके थे या लेने वाले थे।
अच्छा, तो मतलब वो पहले से ही उस दिशा में जा रहे थे।
हाँ, और इसका बहुत ही ठोस ऐतिहासिक प्रमाण हमें बाद में ओल्ड टेस्टामेंट की लेविटिकस की किताब में मिलता है, जहां कनानियों के बेहद अनैतिक व्यवहार का पूरा वर्णन है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सजा नहीं बल्कि एक तरह का डायग्नोसिस था।
बिल्कुल,
नोहा ये बता रहे थे कि ये विशिष्ट वंश भविष्य में किस रास्ते पर जाने वाला है और उसका परिणाम क्या होगा।
ये एक बहुत सटीक तरीका है इसे देखने का। यह एक आध्यात्मिक और नैतिक पतन का डायग्नोसिस था, और इसके ठीक विपरीत नोहा के दूसरे बेटे शेम को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा। नोहा कहते हैं कि शेम के भगवान की जय हो।
और स्रोतों के मुताबिक ये पूरी बाइबल में पहली बार है जब भगवान को किसी विशेष समूह के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब था कि जिस तारणहार या बीज का वादा किया गया था वो शेम के वंश से ही आएगा,
यानी अब्राहम और अंततः इसराइलियों की वंशावली से।
बिल्कुल सही।
और यहाँ एक और भाई बचता है, जैपित। उसके लिए क्या भविष्यवाणी थी?
जैपित के लिए भविष्यवाणी थी कि उसका विस्तार होगा और वो शेम के तंबू में रहेगा। अब तंबू में रहने का अर्थ यहाँ मुख्य रूप से सैन्य विजय से है।
अच्छा।
ऐतिहासिक रूप से जैपित का वंश भौगोलिक रूप से बहुत फैला। यूनानियों और रोमनों को जैपित के वंशज माना जाता है।
ये वाला हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, क्योंकि जब हम इतिहास को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो एक यूनानी था, उसने पूर्व की ओर बढ़कर इस पूरे कनानी और शेमी इलाके पर कब्जा कर लिया।
हाँ, और उसके बाद रोमन साम्राज्य ने भी ठीक यही किया।
और यहीं पर वो भविष्यवाणी अपना असली रूप लेती है। जापेत के वंशजों ने सैन्य रूप से शेम के वंशजों के क्षेत्र पर कब्जा तो जरूर किया, लेकिन
इस संपर्क का अंतिम परिणाम एक बहुत बड़ा धार्मिक आशीर्वाद था। शेम के वंशजों के संपर्क में आने के कारण ही यूनानियों और रोमनों को बाद में ईसाई धर्म का ज्ञान मिला
और फिर वहां से ये पूरी दुनिया में फैला। तो सैन्य विजय अंततः एक आध्यात्मिक जुड़ाव में बदल गई। क्या बात है।
हाँ, ये सच में बहुत गहरी बात है।
रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। एक परिवार के तंबू के अंदर हुई एक घटना कैसे सदियों बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन साम्राज्य के उदय को एक सूत्र में बांध रही है।
बिल्कुल, यहीं से दुनिया का नक्शा बदलना शुरू होता है। और ये हमें उत्पत्ति अध्याय 10 की उस मशहूर सूची की तरफ ले जाता है जिसे राष्ट्रों की तालिका कहा जाता है।
हाँ, राष्ट्रों की तालिका।
आपको पता है, प्राचीन साहित्य के पूरे इतिहास में इस तालिका जैसी कोई दूसरी रचना मौजूद ही नहीं है।
सच में?
हाँ, दुनिया के किसी भी अन्य प्राचीन ग्रंथ में पूरी मानव जाति को एक साथ जोड़कर उनके उद्गम को सिर्फ 3 मूल पूर्वजों शेम, हैम और जापेत तक ले जाने का ऐसा व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है।
और इस तालिका को पढ़ते समय जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि इसमें दिए गए नाम सिर्फ व्यक्तियों के नहीं है।
एकदम सही, आपने स्रोतों में ये गौर किया होगा।
हाँ, जैसे जिन नामों के अंत में इम लगा है जैसे लुडिम, या जिन नामों के अंत में आइट लगा है जैसे जेबुसाइट्स या अमोराइट्स।
हाँ, ये जो प्रत्यय है यानी सफिक्स, ये साफ तौर पर बताते हैं कि हम व्यक्तियों की नहीं बल्कि पूरे समुदायों और राष्ट्रों की बात कर रहे हैं।
मतलब ये एक वंशावली से कहीं बढ़कर उस समय की ज्ञात दुनिया का एक भू राजनीतिक नक्शा है।
बिल्कुल, जो दिखाता है कि लोग मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में कैसे फैले।
लेकिन इस पूरी तालिका में एक बहुत बड़ा अपवाद भी है।
हाँ, और वो अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है।
एक ऐसा नाम जो किसी बहुवचन समूह का नहीं बल्कि एक अकेले व्यक्ति का है, जो उस समय के इतिहास पर एक विशाल छाया बनकर उभरता है। निमरूद।
निमरूद स्रोतों के अनुसार वो कुश का वंशज था और उसे ईश्वर के सामने एक पराक्रमी शिकारी कहा गया है।
लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं कर रहा था, है ना? निमरूद प्राचीन दुनिया का पहला एम्पायर बिल्डर था।
बिल्कुल, वो सत्ता के केंद्रीकरण का पहला असली चेहरा था। अगर आप उन ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालें तो निमरूद सिर्फ एक ताकतवर इंसान नहीं था, उसने शिनार के मैदान में अपना राज्य स्थापित किया।
उसने बेबिल, एरेक और अक्कद जैसे शहरों की नींव रखी थी।
हाँ, कुछ इतिहासकार उसे 2220 ईसा पूर्व के अक्कद के शासक नारम सिन से भी जोड़कर देखते हैं, हालांकि यह पूरी तरह निश्चित नहीं है।
लेकिन एक शिकारी साम्राज्य कैसे बनाता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है?
ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सोचिए, प्राचीन दुनिया में जब लोग छोटे छोटे समुदायों में रहते थे तो उन्हें बाहरी हमलावरों या जंगली जानवरों का लगातार खतरा होता था।
तो उन्हें सुरक्षा चाहिए थी।
बिल्कुल, ऐसे में एक पराक्रमी शिकारी जिसके पास ताकत है वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। लोग उसकी शरण में आते हैं, फिर वो उनकी सुरक्षा के लिए दीवारें खड़ी करता है, शहर बसाता है।
अच्छा, और फिर जैसे जैसे लोग उस पर निर्भर होते जाते हैं
वो सुरक्षा धीरे धीरे नियंत्रण में बदल जाती है। वो रक्षक से शासक और अंततः एक तानाशाह बन जाता है। निमरूद ने यही किया।
उसने आजाद समुदायों को मिलाकर एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य खड़ा कर दिया। दिमाग चकरा देने वाला ये।
हाँ, ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही सटीक चित्रण है।
अब यहाँ मुझे थोड़ा पीछे हटने दीजिए। उत्पत्ति की किताब को मूसा ने लिखा था, है ना?
हाँ बिल्कुल।
लेकिन निमरोद, अक्कद और उन शुरुआती साम्राज्यों की ये बातें तो मूसा के जन्म से सदियों पुरानी हैं, तो मूसा को ये सब इतनी सटीकता से कैसे पता चला?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। उत्पत्ति अध्याय 10 में सदोम और अमोरा का जिक्र उनके नष्ट होने से पहले के रूप में किया गया है,
जिसका मतलब है कि ये जानकारी अब्राहम के समय यानी लगभग 2000 ईसा पूर्व की होनी चाहिए।
एकदम सही।
तो क्या मूसा किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे थे जो पुराने आर्काइव और मिट्टी की पट्टियां खंगाल रहा था?
आप इसे ऐसे देख सकते हैं।
लेकिन अगर उन्होंने पुराने दस्तावेजों का सहारा लिया तो क्या ये महज इंसानों द्वारा लिखा गया इतिहास नहीं रह जाता? मतलब ईश्वरीय कैसे हुआ?
यहीं पर हमें ये समझना होगा कि ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल करना और ईश्वरीय मार्गदर्शन में होना, ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती नहीं हैं।
अच्छा।
हाँ, मूसा ने निश्चित रूप से अपने से पहले मौजूद लिखित दस्तावेजों, वंशावलियों और मिट्टी की पट्टियों का इस्तेमाल किया होगा। बाइबल के अन्य लेखकों ने भी ऐसा किया है। किंग्स या सैमुएल की किताबों में स्पष्ट रूप से पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला दिया गया है।
तो फिर ये उस आधुनिक नजरिए से कैसे अलग है जिसे अकादमिक दुनिया में सोर्स क्रिटिसिज्म कहा जाता है?
ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आधुनिक आलोचक जो सोर्स क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करते हैं, उनका मानना है कि उत्पत्ति की किताब अलग अलग समय के लेखकों ने लिखी है,
जैसे वो जे और पी दस्तावेज वाली थ्योरी।
बिल्कुल वही। वे कहते हैं कि इसमें एक जे दस्तावेज है जो उन लोगों ने लिखा जो भगवान को याहवे कहते थे, और एक पी दस्तावेज है जो बाद में पुजारियों ने लिखा।
मतलब उनके हिसाब से ये सिर्फ विरोधाभासी मिथकों का एक पैबंद है जिसे बाद में जोड़ तोड़कर बनाया गया।
हाँ, उनका नजरिया इसे टुकड़ों में बांटने का है। वे इसे एक भरोसेमंद ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मानते।
तो फिर रॉबर्ट वैनोय जैसे विद्वान इसे कैसे देखते हैं?
उड़ना नहीं था, मूसा एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक शोध कर रहे थे।
उन्होंने प्रामाणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया
और इस पूरी प्रक्रिया को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त था, ताकि इतिहास का एक सच्चा और अचूक रिकॉर्ड संरक्षित किया जा सके।
ये बहुत दिलचस्प है। और अगर ये रिकॉर्ड ऐतिहासिक रूप से इतना प्रामाणिक है, तो अब हमें उस घटना पर आना होगा जो निमरोद की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का चरम बिंदु थी।
आप बेबल की मीनार की बात कर रहे हैं?
हाँ, उत्पत्ति अध्याय 11 की ये घटना पूरी मानव सभ्यता का एक ऐसा मोड़ है जिसने आज की दुनिया का ढांचा तय किया।
बिल्कुल। शिनार के मैदान में लोग एक साथ आए। उन्होंने कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में अच्छी तरह पकाएं।
उन्होंने पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह तारकोल का इस्तेमाल करके एक शहर और एक विशाल मीनार बनाने का फैसला किया।
और उनका घोषित मकसद था अपना नाम बनाना, ताकि वे पूरी धरती पर न बिखरें।
अक्सर लोग इस मीनार को मेसोपोटामिया के ज़िगुरत, मतलब वो सीढ़ीदार धार्मिक पिरामिडों से जोड़ते हैं, जैसे कि राजा हम्मुराबी वाला ज़िगुरत।
हाँ, लेकिन स्रोतों में एक बात बहुत साफ तौर पर उभारी गई है, ये घटना उस 1700 ईसा पूर्व वाले समय से बहुत बहुत पहले की है।
और उससे भी अहम बात ये है कि हमें उस मूल हिब्रू शब्द को समझना होगा जिसका इस्तेमाल यहाँ हुआ है। वो शब्द है मिगडोल।
बिल्कुल। मिगडोल का अर्थ अक्सर किसी धार्मिक इमारत या प्रार्थना स्थल से नहीं, बल्कि रक्षात्मक या सैन्य के लिए बंदी से होता है।
हाँ, जैसे व्यवस्था विवरण की किताब में कनानियों के शहरों का वर्णन आकाश तक ऊंची दीवारों वाले मिगडोल के रूप में किया गया है।
एकदम सही।
तो अगर मिगडोल का मतलब ऊंची दीवारों वाला रक्षात्मक किला है, तो इसका मतलब हम भगवान तक पहुँचने की किसी धार्मिक सीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
मतलब ये प्राचीन दुनिया का पेंटागन था, एक ऐसा सैन्य और राजनीतिक केंद्र जहां से पूरी तानाशाही को चलाया जा सके।
आपने बिल्कुल सही तंत्र पकड़ा है। बात सिर्फ ईंटों की एक ऊंची इमारत की नहीं थी, बात ये थी कि इंसान सत्ता का असीमित केंद्रीकरण कर रहा था।
ईश्वर को दरकिनार करके अपनी ताकत का घमंड दिखा रहे थे।
हाँ, ये एक पूर्ण राजनीतिक तानाशाही स्थापित करने की कोशिश थी, ठीक वैसे ही जैसे जल प्रलय से पहले ख्याति प्राप्त पुरुषों ने हिंसा और नियंत्रण के जरिए किया था।
अगर पूरी मानव जाति एक ही जगह रहती, एक ही भाषा बोलती,
तो बुराई, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की कोई सीमाएं नहीं रहती।
और इसीलिए भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा उस तानाशाही को तोड़ने और सत्ता के इस खतरनाक केंद्रीकरण को हमेशा के लिए रोकने के लिए।
और उन्होंने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
उन्होंने उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी ताकि लोग एक दूसरे की बात न समझ सकें,
और मजबूरन उन्हें पूरी धरती पे फैलना पड़ा।
लेकिन अगर हम भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स के नजरिए से सोचें तो ये आखिर हुआ कैसे? ये एक बहुत ही गहरा तकनीकी सवाल है।
स्रोतों में इस घटना के काम करने के तरीके को लेकर तीन प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं।
अच्छा, पहला क्या है?
पहला सिद्धांत ये है कि भगवान ने तुरंत और सीधे तौर पर लोगों के दिमाग में मौजूद भाषा को बदल दिया। अचानक लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और संवाद न कर पाने के कारण बिखर गए।
ये तो एकदम चमत्कारिक लगता है। और दूसरा?
दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भगवान ने पहले किसी तरीके से लोगों को दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखेर दिया और फिर उस भारी भौगोलिक दूरी और अलगाव के कारण समय के साथ उनकी भाषाएं प्राकृतिक रूप से बदल गईं।
ये थोड़ा ज्यादा तार्किक लगता है। और तीसरा सिद्धांत?
तीसरा सिद्धांत इन दोनों का एक मिश्रण है। इसके अनुसार भगवान ने बेबिल में तुरंत भाषाओं के कुछ मूल समूह या ओरिजिनल स्टॉक्स बनाए।
ओरिजिनल स्टॉक्स मतलब कुछ बेसिक भाषाएं।
हाँ, इससे संवाद टूटा और लोग बिखर गए और फिर उन चंद मूल समूहों से समय के साथ पीढ़ियों के गुजरने के कारण प्राकृतिक रूप से हजारों नई भाषाएं विकसित हुईं।
ये मुझे सबसे ज्यादा विश्वसनीय लग रहा है।
और आज के भाषाई अध्ययन के हिसाब से भी ये विचार सबसे ज्यादा गहराई रखता है।
हाँ, क्योंकि आधुनिक भाषाविद भी ये मानते हैं कि भाषाएं कोई स्थिर चीज नहीं है, वे लगातार बदलती रहती हैं।
बिल्कुल, अगर एक ही भाषा बोलने वाले दो समुदायों को किसी पहाड़ या नदी के कारण अलग थलग कर दिया जाए तो कुछ सौ सालों के बाद वे एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे।
उच्चारण बदल जाएंगे, नए शब्द जुड़ जाएंगे।
आधुनिक विज्ञान और भाषा विज्ञान के निष्कर्ष प्राचीन बाइबल के इस वृत्तांत के साथ कितनी अद्भुत तरह से मेल खाते हैं।
सच में?
आज हम दुनिया में अंग्रेजी, जर्मन, रशियन, स्पैनिश, हिंदी से लेकर संस्कृत और लैटिन जैसी भाषाओं को देखते हैं।
कोई भी सामान्य इंसान कहेगा कि ये सब बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भाषाविद ये साबित कर चुके हैं कि ये सभी इंडो यूरोपियन नामक एक ही विशाल भाषा शाखा से निकली हैं।
और स्रोतों में एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात है, वहाँ एक असीरियोलॉजिस्ट का जिक्र है। हाँ, असीरियोलॉजिस्ट मतलब वो विद्वान जो प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताओं और उनकी भाषाओं का अध्ययन करते हैं।
और उस असीरियोलॉजिस्ट का शोध ये दिखाता है कि प्राचीन सुमेरियन और मिस्री भाषाओं की जड़ें सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के दूर दराज द्वीपों की भाषाओं से जुड़ी हुई हैं।
ये सच में आश्चर्य में डाल देने वाला तथ्य है।
दिमाग सुन कर देता है। जरा गहराई को महसूस कीजिए। हजारों साल पहले मध्य पूर्व के एक मैदान में घटी एक घटना
जो उत्पत्ति की किताब में दर्ज है,
हाँ, वो आज के आधुनिक ग्लोबल लैंग्वेज फैमिली ट्री की इतनी सटीकता से व्याख्या कर रही है।
यही कारण है कि हम इन स्रोतों का इतना गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि ये कहानियां महज कोई मिथक नहीं है।
बिल्कुल नहीं। नोहा की भविष्यवाणी, निमरूद की तानाशाही और बेबल का सैन्य किला, ये सब असल में मानव इतिहास, भू राजनीति और सत्ता के मनोविज्ञान का यथार्थवादी चित्रण है।
और ये हमें ये भी बताता है कि इंसानियत की आजादी और केंद्रीकृत सत्ता के बीच का ये संघर्ष कोई नया नहीं है।
हम अक्सर सोचते हैं कि तानाशाही या दुनिया पर नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा आधुनिक राजनीति की देन है,
लेकिन सच्चाई ये है कि ये मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे अस्तित्व का हिस्सा रहा है।
बेबल की मीनार हमें चेतावनी देती है कि जब भी इंसानी ताकत एक ही जगह सिमटने लगती है तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है।
ईश्वर ने उस समय भाषाओं को बांटकर इंसानियत को एक पूर्ण तानाशाही से बचा लिया था।
लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है।
वो क्या?
बाइबल के उस प्राचीन काल में इंसानियत को एक निरंकुश तानाशाही से बचाने के लिए उनकी भाषाएं अलग कर दी गई थी। संवाद टूट गया था ताकि सत्ता का केंद्रीकरण रुक जाए।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन आज जरा आपने चारों तरफ देखिए, इंटरनेट, एल्गोरिदम और इस ग्लोबल डिजिटल संस्कृति के जरिए हम क्या कर रहे हैं?
ये एक बहुत गहरा सवाल है।
हम कोड और डेटा के रूप में फिर से एक सार्वभौमिक भाषा बना चुके हैं। हम क्लाउड सर्वर्स के जरिए एक केंद्रीकृत दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
जहां कुछ गिने चुने लोग या टेक कंपनियां पूरी दुनिया की जानकारी और विचारों को नियंत्रित कर सकती हैं।
बिल्कुल, शायद नक्शे की वो साफ रेखाएं जिनसे हमने शुरुआत की थी वो अब फिर से धुंधली हो रही हैं।
और हम जाने अनजाने उसी प्राचीन शिनार के मैदान में वापस आकर खड़े हो गए हैं।
बस इस बार हमारी मीनार
ईंटों और तारकोल की नहीं, डेटा और फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बनी है। यह सोचने वाली बात है कि क्या हम डिजिटल युग की एक नई बेबल की मीनार का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसी असीमित तानाशाही जिसे हजारों साल पहले रोका गया था। खैर, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।